मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 10 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन सात नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं नवनीत कन्नौजिया जौनपुर उत्तर प्रदेश से, सौरभ पटेल आपका गांव है सलारपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, पंकज कुमार आपका गांव है कस्तोली जिला बेगूसराय बिहार से, हरि कृष्ण साहू आपका गांव है देवगांव जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, योगेश बघेल आपका गांव है पखरपुरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, लोपित सामल गुरुग्राम हरियाणा से और महेश सिंह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे अपनी ही सरकार की आलोचना किए जाने के विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और खबरों को देखने से पहले मुझे लगता है कि फिलहाल जो स्टूडेंट के दिमाग में एक द्वंद्व की स्थिति बन गई है उसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे करूं। कल से एक खबर बहुत तेजी के साथ अखबारों में भी और सोशल मीडिया पर भी फैल रही है कि जो सी सेट का पेपर है प्रीलिम्स में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उसे समाप्त करने के बारे में सोचा जा रहा है। मित्रों इसकी जो ओरिजिनल खबर है वो मैंने देखी है, जो जर्नलिस्ट इस खबर को बाहर लेकर आई हैं उनके स्टेटमेंट को भी मैंने ध्यान से सुना है। देखिए खबर कुल मिलाकर यह है, यूपीएससी ने डेफिनेटली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को प्रपोज किया है कि सी सेट के पेपर को समाप्त कर देना चाहिए और इसकी जगह पर कुछ दूसरी शुरुआत करें। दूसरी शुरुआत करने के रूप में क्या है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। यूपीएससी खुद कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती जो खासकर एग्जामिनेशन के पैटर्न पर परिवर्तन के बारे में है, वो इसके लिए सरकार से इजाजत मांगती है और सरकार की इजाजत देने वाली जो संस्था है आप कह लीजिए जो मंत्रालय है जो विभाग है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, राइट। तो यूपीएससी ने उसके पास भेज दिया है। अभी जब नई सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर एक मंत्रालय हर एक विभाग अपने 100 डेज का विजन दे, यानी कि 100 दिनों में वो क्या करना चाह रहे हैं, उनके पास क्या क्या चीजें हैं वो बताएं। और उसके तहत डीओपीटी ने इस प्रपोजल का उल्लेख किया है कि यूपीएससी से उन्हें ऐसा प्रस्ताव मिला है, बस बात यहीं तक सीमित है। अब डीओपीटी को इस पर निर्णय लेना है। डीओपीटी इस पर कोई भी निर्णय ले सकती है कि नहीं इसे कंटिन्यू किया जाए, नहीं इसे समाप्त कर दिया जाए, इसकी जगह पर यह नई शुरुआत की जाए। अब क्या होता है मित्रों हमें नहीं मालूम। अब सवाल यह है कि स्टूडेंट क्या करें। देखिए मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि इस तरह के परिवर्तन के दौर यूपीएससी लगातार एग्जामिनेशन में करती रहती है, इस तरह की बातें भी सामने आती रहती हैं, फिर जो भी होता है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। जो स्टूडेंट अभी 2020 के प्रीलिम्स में बैठना चाह रहे हैं फिलहाल उन्हें इस खबर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे भी ये क्वालिफाइंग पेपर है, आप थोड़ा ये कह कर सकते हैं कि इसकी प्रिपरेशन को कुछ समय के लिए किनारे कर दें। वैसे भी क्वालिफाइंग चूंकि पेपर है तो आप थोड़ी सी तैयारी से भी इसे क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप अपनी स्थिति को देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है तो आप ये मत मान करके चलिए कि इसे यूपीएससी खत्म करने जा रही है तो अब मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा। आपको चाहिए कि आप थोड़ी थोड़ी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बस थोड़ा बहुत देखना करना है, काफी कुछ मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी आप उसको थोड़ा सा रोक दीजिए, बाद में जब स्थिति क्लियर हो जाएगी तो आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन आपको यह निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि अब सी सेट का पेपर खत्म होने ही जा रहा है। तो दोस्तों ये मेरी एक विनम्र सलाह है, इस पर आप सब विचार करें और अपने अपने हिसाब से फिर अपने अपने लिए निर्णय लें। अब मैं खबरों पर आता हूं। दोस्तों एक खबर जो अखबारों में है, आज रेडियो और मैं दूरदर्शन के खबर की बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ ऐसी विशेष खबरें नहीं थी। एक इंपॉर्टेंट खबर है कि सरकार ने कहा है कि कश्मीर में घुसपैठियों की संख्या में कमी आई है, आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं, और साथ ही जो सीमा पर जो संघर्ष विराम का जो उल्लंघन होता है वह भी कम हुआ है। यह सरकार का स्टेटमेंट है और यह एक बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्यों है कि इसका मतलब यह हुआ कि जो पाकिस्तान है उसने अपनी गतिविधियों पर थोड़ा सा नियंत्रण किया है। हालांकि हम ये नहीं मान सकते कि ये कोई स्थायी ही है, जिस कारण भी उसने ऐसा किया हो, लेकिन पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि सरकार ने भी इस बीच में वहां की सुरक्षा के लिए, आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए काफी कड़े कदम उठाए हैं। आपको मालूम है कि जो स्ट्राइक किया, जो एयर स्ट्राइक किया गया था वो तो है ही, इसके बाद से कुछ कदम उठाए गए कि वहां के जो आतंकवादी संगठन थे उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनकी सुविधाएं वापस ले ली गई, उनको फंड कहां से मिल रहा है इसकी जांच पड़तालें सब शुरू हो गई, तो यह भी एक बहुत बड़ा कदम था। जैसे ही वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी बने, वैसे ही उन्होंने कश्मीर का दौरा भी किया और साफ साफ कह दिया कि हम आतंकवाद के बारे में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, यानी कि कोई छूट नहीं देंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर सरकार इस तरह की बात कहती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है दोस्तों, ये आपके मेन एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो अभी जब सितंबर में मेंस के एग्जाम होंगे तो जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आपके उत्तर लिखने के लिए हो सकता है। जो दूसरी खबर है दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही जो यूनेस्को है उसने जयपुर शहर का जो परकोटा है, परकोटा मतलब आप दीवाल कह लीजिए, और उसके अंदर जो जो भी स्थापत्य की चीजें हैं और दूसरी चीजें हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। मतलब पहले तो अहमदाबाद शहर को किया गया था और यह भारत का दूसरा शहर है जयपुर, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर शामिल घोषित किया है। भारत के लगभग 37 जो बिल्डिंग्स हैं, स्मारक हैं, वो विश्व धरोहर घोषित किए जा चुके हैं। तो अब ये जो जयपुर है उसमें से अब संख्या टोटल मिलाकर के 38वीं हो गई। दरअसल होता यह है कि यूनेस्को जब किसी भी स्थान को विश्व धरोहर घोषित कर दी जाती है तो उसकी देखरेख के लिए बकायदे यूनेस्को मदद करता है, उस स्थान का प्रचार प्रसार भी करता है, और जब उस स्थान का प्रचार प्रसार होता है तो स्वाभाविक है कि दुनिया के लोग उस स्थान को देखने के लिए आने को लालायित होते हैं और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। तो ये एक दूसरी खबर थी। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, मुझे दो बातें आप लोगों से और करनी है जो कल से जुड़ी हुई है। कल मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का आपको एक आर्टिकल देते हुए कहा था कि उसका जो चौथा पैराग्राफ है आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जरूर उस पैराग्राफ को देखा होगा। देखिए उस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। हम औद्योगिक विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, निर्यात में भी बढ़ रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े एक तरह से कंज्यूमर कंट्री भी हैं चाइना के बाद जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो। इसमें दो तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं समीक्षा करने के लिए, एनालिसिस के लिए। पहली समीक्षा के लिए ये मिलता है कि हम जो हमारा जो दवा उद्योग है वो बहुत तेजी से निर्यात कर रहा है क्योंकि हमारी दवाएं बहुत सस्ती पड़ती हैं। लेकिन एक संकट इस तरफ इसमें इशारा किया गया है, वो ये कि जो हम दवाएं बनाते हैं उसका जो बहुत से रसायन पदार्थ है वो चीन से आता है, और आप देखिए कि ट्रेड वार शुरू हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में एक संकट हो सकता है कि एक चीन से जो आने वाली जो वस्तु है अगर उसमें कहीं कोई संकट आ गया तो हमारे दवा उद्योग पर सीधे सीधे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरा देखिए कि स्मार्टफोन, भारत में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हम स्मार्टफोन बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, मतलब उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और उसे हम इकट्ठा कर रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि अगर हमने सच में अपना स्मार्टफोन बनाया होता तो हमारे औद्योगिक विकास की दर कितनी जबरदस्त होती, क्योंकि फिर वो सारा धन भारत में रहता। इसके बाद इन्होंने एक बात और भी कही है, सॉफ्टवेयर, यानी भारत सॉफ्टवेयर में अभी वर्ल्ड लीडर जैसा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात होती है उसमें भारत ने कुछ नहीं किया है, वो सब दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, तो हम फिर यहां पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप 5G को ही देख लीजिए, जिसकी चर्चा मैंने शायद पहले आप सबसे की थी कि 5G भारत में इतना बड़ा उसका बाजार है, लेकिन उस टेक्निक को हम इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से खरीदेंगे, और अमेरिका और चीन के बीच में अभी इसे हम द्वंद्व में झूल रहे हैं कि हम अमेरिकन कंपनी से 5G का समझौता करें या चाइना से करें। कल्पना करके देखिए कि अगर भारत की किसी कंपनी ने अपनी तरफ से 5G बना लिया होता, इवॉल्व कर लिया होता, इन्वेंट कर लिया होता, तैयार कर लिया होता, तो कितनी बड़ी धनराशि हमारे देश में रह जाती। तो समीक्षात्मक दृष्टि से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे उस आर्टिकल्स में मिले थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड करता हूं, जरूरी नहीं कि उसकी सारी चीजें काम की, हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक लाइन ही आपके काम की हो, एक शब्द ही आपके काम का, अगर कोई डेटा है या कोई तथ्य है तो बस आप उसे ही नोट कर लीजिए और मान करके चलिए कि आपका काम हो गया। उस पूरे आर्टिकल को आपको रटने की, समझने की, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिया था, वो था शून्य लागत खेती पर। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि यह खेती, शून्य लागत कृषि, किन मायनों में जैविक कृषि से भिन्न है। और उसके लिए देखिए बकायदे उसमें चार पॉइंट्स दिए हुए हैं और हाईलाइट किए हुए हैं, ये चार पॉइंट्स आपको नोट कर लेने चाहिए। राइट दोस्तों, अब मुख्य विषय के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, मैं थोड़ी सी चर्चा लेकिन जरूर करना चाहूंगा। मैं आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, उस कमेंट में उन्होंने बताया है कि हमारे जो दो सांसद हैं, रूढ़ी प्रताप सिंह जी जो बिहार के छपरा से हैं और हेमा मालिनी जी जो मथुरा से हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार की आलोचना की है। और इस मायने में आलोचना की है कि जो हमारी सरकार है हमारे क्षेत्रों में पर्यटन को पर्याप्त बढ़ावा नहीं दे रही है, और उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। जब रूढ़ी प्रताप सिंह जी ने अपनी बात रखी तो जो हमारे मिनिस्टर साहब थे, अपने बचाव में उन्होंने बात कही कि नहीं नहीं हम वहां जो मेला लगता है, खासकर उनके क्षेत्र में बिहार के छपरा एरिया में सोनपुर का मेला, तो बोले कि नहीं नहीं हम तो उसको कर सकते थे लेकिन वहां से अभी तक डीपीआर का मतलब कहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो अभी नहीं आई है। राइट, जैसे ही उन्होंने कहा तो जो सांसद थे रूढ़ी प्रताप सिंह जी, उन्होंने डीपीआर की बकायदे प्रति लहराते हुए कही कि जो मिनिस्टर साहब हैं वो झूठ बोल रहे हैं, डीपीआर की रिपोर्ट पहले से भेजी जा चुकी है, तो यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। विशेषाधिकार का मतलब है कि कोई मिनिस्टर इस तरीके से गलत बयानी संसद में कैसे कर सकता है। अब यहां देखिए कि इस घटना के पीछे तथ्य क्या है। घटना के पीछे है कि ये जो दोनों सांसद हैं ये सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं, राइट, और जो मिनिस्टर है वो उनकी अपनी पार्टी का है, तो संसद में वो अपनी ही पार्टी के सरकार ही है, मिनिस्टर है मतलब सरकार, उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर थोड़ी सी लंबी बात किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आपका जो सिलेबस, उसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है लेकिन उसमें एक शब्द है पॉलिटी, तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, तो इस पर मैं कल थोड़े से विस्तार से बात करना चाहूंगा। जल्दी से बात करके समय की सीमा को देखते हुए मैं नहीं चाहता कि मैं इस टॉपिक को निपटा दूं, तो आप सबकी एक मौन अनुमति चाहूंगा कि इस पर हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से एक मित्र हैं शबनम दुबे, उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।